ओम शांति। तीन दिन यहाँ ज्ञान सरोवर में कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। आज वापस जाने का दिन, आज साइट सीइंग है, कल वापस जाने का दिन है। वापस जाते जाते बहुत कुछ खजाना आप सभी ले जा रहे हैं, और जो भी खजाने ले जा रहे हैं तो उसको ज़रूर आप प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे, और ख़ास जो मेडिटेशन यहाँ सिखाया जा रहा है तो उसका अभ्यास रोज़ अगर करते हैं थोड़े समय के लिए, आपके जीवन में बहुत लाभ नज़र आने लगता है। क्योंकि आध्यात्मिकता जो है वो केवल थोड़े समय के लिए हमने सुन लिया, समझ लिया, लेकिन प्रैक्टिस नहीं किया तो उसका लाभ इतना नहीं होता है। जैसे शरीर के लिए हर रोज़ भोजन की आवश्यकता है, स्नान की आवश्यकता है, क्योंकि एक दिन भी अगर भोजन ना करें तो क्या होगा? निशक्तता, है ना? और फिर स्नान ना करें तो फ्रेशनेस फील नहीं होता है। ऐसे ही ये स्पिरिचुअलिटी जो ज्ञान और योग जो है वो रिफ्रेश भी करता है, आत्मा को साफ भी करता है और फिर सशक्त भी करता है। तो ये एक स्टडी है, एजुकेशन है स्पिरिचुअलिटी। तो वो इस आध्यात्मिकता में मेन ये बात है कि परमात्मा के साथ हमारा कनेक्शन किस रीति का, क्वालिटी क्या है, परमात्मा के साथ कनेक्शन हमारा क्वालिटी क्या है। क्योंकि हर इंसान, चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी ना किसी रूप से परमात्मा को याद करते ज़रूर आए हैं। भले अपने आप को नास्तिक कहते होंगे कोई, लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं कुछ विश्वास, हायर पावर के अंदर कहीं ना कहीं वो विश्वास ज़रूर रहेगा। लेकिन जब हम यथार्थ रूप से समझ करके कनेक्शन जोड़ते हैं, उसमें क्या होगा? कम मेहनत में ज़्यादा प्राप्ति की अनुभूति हम कर सकते हैं। तो यहाँ जो राजयोग सिखाया जाता है, ये आत्मा और परमात्मा के बीच का कनेक्शन, जैसे आप सभी ने सुना होगा, समझा होगा कि योग की परिभाषा क्या है, है ना? योग का अर्थ क्या है? कोई समझते हैं फिजिकल एक्सरसाइज योग है? हाँ, वो हठ योग है, एक्सरसाइज जरूरी है शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए, है ना? लेकिन योग का यथार्थ अर्थ है जोड़, कनेक्शन, है ना? वियोग का अर्थ है अलग हो जाना, सेपरेट हो जाना, दूर हो जाना, है ना? वियोग अलग, योग कनेक्शन, है ना? तो यहां कनेक्शन किसका, किसके साथ, है ना? जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर के हम योग लगाना शुरू करते हैं, वस्तु के साथ और व्यक्ति के साथ। वस्तु को याद किया, वस्तु के साथ मेरा कनेक्शन जुड़ गया, मानसिक मेंटल कनेक्शन वस्तु के साथ जुड़ा। इंसान को याद किया तो इंसान के साथ मेरा कनेक्शन जुड़ जाता है। लेकिन यह जो जब भी हम वस्तु को और इंसान को याद किया, कुछ प्राप्तियां नहीं होती। वस्तु को याद किया तो इतने खुश, मन थोड़ा बहुत खुशी हो गया, हाँ मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, थोड़ा बहुत खुशी होगी, लेकिन फिर वहां से कुछ प्राप्ति ऐसे कुछ नहीं होगा। और इंसान को याद किया, अगर वो आत्मा मेरे एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी में है तो फिर मुझे कुछ प्राप्ति होगी। जैसे गुरु को याद किया, कोई ऐसे आध्यात्मिक व्यक्ति को याद किया, मेरे एनर्जी लेवल से अगर उनके एनर्जी लेवल ज्यादा है तो कुछ प्राप्ति मुझे हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे से लोअर एनर्जी वाले इंसान के साथ मेरा कनेक्शन जुड़ा और ही मेरे एनर्जी ड्रेन आउट हो जाएगा, है ना। तो लेकिन वो भी, और यहां जो योग हम बता रहे हैं वो परमात्मा के साथ का योग है, क्योंकि परमात्मा सर्वशक्तिमान है, वो ज्ञान का सागर है, वो हमेशा ऐसे, ऐसे नहीं कि उनकी स्थिति फ्लक्चुएट होता है, ऐसे नहीं है। 2400 घंटे हमेशा के लिए उनकी एनर्जी लेवल बहुत ही हाई है। तो इसलिए जब भी हम उनके साथ कनेक्शन जोड़ते हैं, आत्मा को प्राप्ति ही प्राप्ति होती। जब परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ेंगे तब हम अपने ही कर्मेंद्रियों पर राज्य कर सकते हैं। ये है लक्ष्य राज्ययोग का, मेडिटेशन का। क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि मेडिटेशन करने से मन की शांति मिल जाए, हेल्थ ठीक हो जाए, संबंध ठीक हो जाए, धन का लाभ हो, ये हो वो सारी स्थूल चीजें हैं, वो तो बाद में आएगा ही सब कुछ। लेकिन सबसे पहले सबसे मुश्किल काम क्या है? मुश्किल बात है अपने ही कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करना। जो बोलना चाहे वही बोले, जो सुनना चाहे वही सुने, जो कर्म करना चाहे वही कर्म करे। स्वराज्य अधिकारी हम कहते हैं, ना। तो जब हम उस स्थिति में स्थित हो जाते हैं, मतलब यहां तक भी अभ्यास करते करते हम सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को भी कंट्रोल कर सकते, जो सोचना चाहे वही सोचे, जो संस्कार मेरा परिवर्तन करके, जो संस्कार मैं चाहती हूं वही संस्कार मेरा हो जाए, यहां तक हम जा सकते हैं इस राजयोग के द्वारा। तो मेन लक्ष्य जो राजयोग से है, संस्कारों में परिवर्तन करना, अपने ही संस्कार जो नेगेटिव और वेस्ट है तो उसको परिवर्तन करते करते सब प्रकार के सुख शांति जीवन में आ सकता है, है ना। तो अभी हम समझेंगे ये राजयोग का अभ्यास या मेडिटेशन का अभ्यास हम करें कैसे, क्योंकि कल और परसों के जो सुबह के सेशंस में आपने पहला स्टेप और दूसरा स्टेप समझा मेडिटेशन के। सबसे पहले दिन मेडिटेशन का पहला स्टेप क्या था? कि अपने आप को समझना, है ना, कि मैं कौन हूं। अभी तक जो समझ रहे थे, नाम रूप से हम अपने आप को पहचान रहे थे, लेकिन इस शरीर से भी उठकर कुछ और चीज है जो आत्मा हम कहते हैं, वो मेरा यथार्थ परिचय है, है ना। मैं आत्मा हूं, शरीर मेरा है, ये समझ में आया। और सेकंड दिन, तो कल का दिन था दूसरा दिन, उसमें ये समझ में आया कि परमात्मा कौन है और उनका कर्तव्य क्या है। सिंपल है, परमात्मा जैसे आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप अति सूक्ष्म ज्योति है, ऐसे परमात्मा भी अति सूक्ष्म ज्योति है, लेकिन अंतर क्या है? वो शक्तियों का भंडार है, वो बेहद है, है ना, सागर है, ये अंतर है बस। आज हम ये देखेंगे कि आत्मा और परमात्मा के बीच हम कनेक्शन कैसे जोड़ेंगे। योग का दूसरा नाम है याद। योग हम कहां से कनेक्शन कर दे रहे? याद से, मन से। जिसको भी याद किया वो कनेक्शन जुड़ा, उसको हम योग कहते हैं। योग कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, योग माना याद। जिनको हमने याद किया उनके साथ मेरा योग है, है ना। तो अभी परमात्मा के साथ योग लगाने के लिए ये समझना होगा कि मेरा मन किस किस को याद करता है। तो परमात्मा को याद करना क्यों मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इसीलिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे बुद्धि या मन कहाँ कहाँ जाता है। तो उस अनुसार परमात्मा को उस स्थान में हम देंगे, स्थान देंगे, तो उस ऑटोमेटिकली आत्मा परमात्मा को याद करना उसके लिए सहज हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहली बात, किसको याद करते हैं आप? कोई अजनबी को नहीं याद करते, कोई स्ट्रेंजर को आप याद नहीं करते, क्योंकि उसके बारे में पता ही नहीं है, आप क्यों याद करेंगे उनको, है ना। लेकिन जब परिचय मिला, जैसे आप यहां आए तो दो चार लोगों से आपका इंट्रोडक्शन हुआ, परिचय हुआ, तो फिर वापस जाने के बाद उनको याद आप कर सकते हैं क्योंकि उनके बारे में पता चला, इंट्रोडक्शन हो गया। जिनका इंट्रोडक्शन हुआ, परिचय हुआ है, उनको ही आप याद कर सकते हैं। और दूसरा स्टेप है जिनके साथ संबंध है, है ना। परिचय तो बहुत सारे लोगों के, लेकिन एक व्यक्ति के साथ आप लगातार कम्युनिकेट करते रहे, फ्रेंडशिप बढ़ गया, तो वो संबंध जुड़ा फ्रेंडशिप का, है ना। तो वो सेकंड लेवल है संबंध। जिनके साथ संबंध है उनको हम याद करते हैं। और तीसरा लेवल, बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, बहुत सारे संबंधी होंगे, बहुत सारे कजिन्स होंगे, लेकिन दो चार लोग खास होंगे, एकाध लोग खास होंगे, जो गहरे फ्रेंडशिप एक व्यक्ति के साथ, दो लोगों के साथ होगा, बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, लेकिन एक दो के साथ क्यों गहरा है वो फ्रेंडशिप? क्योंकि वहां स्नेह है, वहां कहीं ना कहीं थॉट मिलते हैं, सोच मिलता है, वेवलेंथ मिलता है, कहीं ना कहीं एक दूसरे को समझते हैं, है ना। तो वो स्नेह बढ़ने के कारण से और थोड़ा गहरा हो जाता है वो संबंध। और चौथा लेवल है जहां प्राप्ति है, जहां कुछ मिलने वाला होता है ना, जहां से, उनको हम बहुत याद करते हैं, है ना। ये चारों ही लेवल, ये चारों ही जगह पर मन बार बार जाता है, जिनका परिचय है, जिनके साथ संबंध है, जिनके साथ स्नेह है, और जिनके जिनसे मुझे प्राप्तियां हैं, है ना। तो अगर ये चारों ही चीजें अगर परमात्मा के साथ लागू करते हैं तो फिर मन को वहां लगाना इजी हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहला लेवल है परिचय, है ना। परिचय तो मिल गया कल, परमात्मा कौन है यथार्थ परिचय कल मिला, ज्योति बिंदु स्वरूप, वो केवल परिचय तक है। क्योंकि अगर केवल परिचय तक है फिर बाद में मेहनत करना पड़ेगा उनको याद करने के लिए। जैसे आप यहां आए, दो चार लोगों से मिले, उनका परिचय हुआ, लेकिन वापस जाने के बाद दो चार महीने के बाद याद, वो उनसे मिले कहीं से तो थे, उनका नाम क्या था? मेहनत करना पड़ेगा उनको याद करने के लिए, क्योंकि केवल परिचय तक सीमित है। उस दीदी से तो मिले थे, उनका लेक्चर सुना था, लेकिन नाम क्या था याद नहीं आ रहा है। मेहनत है ना। तो ऐसे केवल मेरा परिचय है परमात्मा के साथ, परमात्मा तो हम सबको जानते हैं, है ना, वो तो जानी जाननहार है, वो तो मेरे पिता है, तो वो तो हमें ही जानते हैं, लेकिन क्या मैं परमात्मा को जानती हूं, ये बात है। तो परिचय तो मिल गया कल, है ना। तो और दूसरी बात ये है संबंध, और गहरा संबंध। संबंध जब जुड़ जाता है तो वहां हमें ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है उनको याद करने की। आप अपने बच्चों को याद करने की मेहनत थोड़ी करते हैं, ऑटोमेटिकली याद आ गए, है ना। अपने माता पिता को याद करना मुश्किल नहीं है क्योंकि संबंध है, है ना। जहां संबंध है वहां याद करना मुश्किल नहीं लगता। इसीलिए कहते हैं परमात्मा के साथ संबंध जोड़ना इसीलिए जरूरी है। ऐसा नहीं कि अभी हम जोड़ रहे हैं, नहीं, संबंध है, केवल उसको हमें याद करना पड़ेगा, बस फिर से उस संबंध को और गहरा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि संबंध बिल्कुल नहीं है, पर मैं मानू या ना मानू परमात्मा तो मेरे पिता है ही है, मुझ आत्मा के पिता है, भले शारीरिक माता पिता अलग अलग है हर एक के, मैं मानू या ना मानू मुझ आत्मा के पिता तो है ही है। लेकिन उस संबंध को याद करते हुए जब मैं परमात्मा को याद करती हूं वो फिर सहज हो जाता है। और दूसरी बात, संबंध के साथ क्यों याद करना है, जैसे हिंदू धर्म में आरती करते समय हम तो कहते हैं तुम मात पिता बंधु सखा सब आप हो, लेकिन फिर भी वो भले वो आरती तक या फिर पूजा तक वो सीमित रह जाता है, लेकिन फिर जीवन में जब वापस घर आते हैं फिर वो संबंध उसके साथ हम याद नहीं करते, कहने मात्र रह जाता है लेकिन प्रैक्टिकली वो संबंध नहीं जुटा हुआ होता है। लेकिन यहां हम ये कहते हैं ये जोड़ के हर कर्म में हर जीवन में अपने जीवन में अगर परमात्मा के इन्वॉल्वमेंट हम अलाउ करते हैं तो आप देखेंगे आपके जीवन बहुत सहज होने लगता है, बहुत सहज होने लगता है, है ना। तो क्यों जरूरी है परमात्मा के साथ संबंध जोड़ना, तीसरी बात यह है कि भावनाएं जुड़ जाती हैं। जहां भावनाएं जुड़ जाती हैं वहां याद करना इजी हो जाता है, और जहां भावनाएं जुड़ जाती है वहां हमारी इमोशनल क्वोशंट स्टेबल हो जाएगा, इमोशनल स्टेबिलिटी आना शुरू होगा। क्योंकि आजकल की दुनिया में हम देखते हैं सभी संबंध हैं, माता पिता है, भाई बहन है, सब होते हुए भी कहां ना कहां वो कनेक्शन उन लोगों के साथ नजर नहीं आता, कहीं ना कहीं मन मोटाव है, नाराजगी है, थोड़ा सा घृणा भाव है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नेगेटिविटी होने के कारण से जो कनेक्शन परिवार के साथ होना चाहिए वो ना होने के कारण से फिर अकेलापन महसूस होता है। भीड़ में भी आजकल इंसान अकेला है, सब होते हुए भी अकेलापन क्यों महसूस हो रहा है, कहीं ना कहीं कनेक्शन कटा हुआ है। कनेक्शन जहां कटा हुआ है तो ऑब्वियसली वह इमोशंस हील नहीं होते हैं। बच्चा जब पैदा होता है तो उसको माता पिता दोनों चाहिए होता है, अगर पिता है लेकिन मां नहीं है तो कहीं ना कहीं वो इमोशन अंदर से वो होगा कि काश मेरी मां होती, है ना। दोनों की आवश्यकता है, अगर मां है पिता नहीं है तो भी वो अधूरापन महसूस होगा कि खास मेरे पिता होते, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी वो फील नहीं करता। तो हर संबंध से आत्मा को इमोशनल हीलिंग होता है। इसीलिए पहले जमाने में तो टेंशन क्या है, स्ट्रेस क्या है, एंजाइटी क्या है वो पता ही नहीं था, क्योंकि फैमिली सिस्टम हमारा बहुत स्ट्रांग था। लेकिन अभी वो फैमिली सिस्टम स्ट्रांग ना होने के कारण से छोटे छोटे बच्चों में ये मेंटल प्रॉब्लम्स जो एंजाइटी है, टेंशन है, डिप्रेशन है, हर मेजॉरिटी लोगों में ये सारा प्रॉब्लम्स नजर आ रहे हैं, है ना। तो अभी हम कहां से हील करेंगे, इमोशनल स्टेबिलिटी कहां से लाएंगे। हम ये नहीं कह सकते कि इनसे मुझे मुझे प्यार दो, प्यार दो, रेस्पेक्ट दो, सम्मान दो, रिकग्निशन दो, इंसान से तो नहीं मांग सकते अभी, है ना। इसीलिए कहते कि चलो परमात्मा जो हमेशा अवेलेबल है तो सर्व संबंधों के साथ अवेलेबल है, तो उनके साथ हम कनेक्शन जोड़े। और इंसान से भी अगर लेने की कोशिश करें तो कलयुगी दुनिया में हर आत्मा के एनर्जी लेवल कैसा है अभी? जैसे मोबाइल में वो बैटरी का लेवल देखते हैं ना, हर एक आत्मा की जो बैटरी लेवल है ना, टिमटिमा रहा है, टिमटिमा रहा है, लास्ट एक डंडा बचा हुआ है। जब उसको ही टेंशन है लाइफ में, उसको ही डिप्रेशन है, तो मैं कहां से उससे मांगू प्यार, रिकग्निशन, सम्मान कहां से मांगू, है ना? वो खुद को चाहिए उसको, है ना? तो इसीलिए तो यहां से मांगी भी तो एक बूंद मिलेगा बस, जिससे मैं आत्मा संतुष्ट नहीं हो सकती, है ना? अगर बहुत भूख लगी है, एक छोटा सा कटोरी चावल और दाल लेके आए तो आपके संतुष्टि होगी? नहीं होगी, है ना? थोड़ा बहुत मिलेगा लेकिन उससे भी संतुष्टि नहीं मिलेगी, है ना? ऐसे इसीलिए वो जब सागर है, जो आत्मा की जो प्यास है, आत्मा को जो चाहिए, वहां से संतुष्टि आत्मा को मिल सकती है ना। तो इसीलिए परमात्मा के साथ सर्व संबंध वो गहरा हो जाता है। जैसे अगर कोई स्ट्रेंजर है, वो रास्ते पे चल रहे हैं आप, और कोई एक्सीडेंट हो जाता है किसी का, दो गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है, आप तो ऐसे स्पेक्टेटर है, आप देखते हैं दो गाड़ियों के बीच में एक्सीडेंट हो गया, उस टाइम पे ठीक है, मानवता के अनुसार, ह्यूमैनिटी के बेसिस जाकर के थोड़ा बहुत मदद कर लिया, थोड़ा जो भी हॉस्पिटल पहुंचाना था किसी को भी, तो हॉस्पिटल पहुंचा दिया, और फिर दो चार दिन के बाद भूल भी जाएंगे कि ठीक है ऐसा हो गया था, ठीक है। लेकिन अगर उस एक्सीडेंट में अगर कोई आपका बहुत गहरा दोस्त है ना, कोई और बहुत ही नजदीक वाला दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, तो आप बहुत कंसर्न रहेंगे इसका ठीक हो गया नहीं हुआ, है ना? वो बार बार फोन करेंगे, कुछ चाहिए तो नहीं, क्या है? तो वो क्यों, ये डिफरेंस क्यों है? पहले जो स्ट्रेंजर था उसके लिए इतना कंसर्न नहीं था, लेकिन अभी जो दोस्त है उसके लिए कंसर्न क्यों है? क्योंकि संबंध का डिफरेंस आ गया। इसके साथ संबंध नहीं था, इसके साथ गहरा संबंध है, इसीलिए इमोशंस कनेक्टेड है। इसीलिए परमात्मा के साथ जब इमोशंस कनेक्ट हो जाता है, तो और डीप और गहरा हो जाएगा अपना संबंध, अपनी याद, और मुश्किल नहीं लगेगा, है ना? तो इसीलिए परमात्मा को पिता के दो चार संबंध, हम तो कहते हैं सात संबंध, लेकिन एटलीस्ट दो चार संबंध भी हम निभाएं या उस रीति से याद करें, बहुत कुछ प्राप्तियां होती हैं। एक है परमात्मा पिता के रूप में जब हम याद करते हैं, है ना? पिता से क्या मिलता है, लौकिक पिता से क्या मिलता है? सिक्योरिटी, रिकग्निशन, पावर, जो भी है, है ना? तो एटलीस्ट सिक्योरिटी मिलता है। तो ऐसे ही जब परमात्मा को पिता मान लिया, आत्मा को शक्ति मिलती है, सिक्योरिटी मिलती है कि हाँ मेरे ऊपर कोई तो है मेरी देखभाल करने वाली। और गहरा अगर हम रिकग्नाइज करते अपने आप को, संबंध जब गहरा होना शुरू होता है ना, तब हम ये भी महसूस करते हैं वो हमेशा मेरे गाइड बनकर मेरे साथ मौजूद होते हैं। कि जो भी प्रॉब्लम्स है, माता पिता अपने बच्चों की थोड़ा भी प्रॉब्लम हो ना, वो मदद करने के लिए तैयार होते हैं। वहां कोई स्वार्थ नहीं होगा, वहां कोई कुछ ऐसी दूसरी बातें नहीं देखते हैं, तो वो हमेशा मदद के लिए तैयार होते हैं। तो पिता के रूप में शक्ति और सिक्योरिटी की अनुभूति, माँ के रूप में माँ से क्या मिलता है? निस्वार्थ प्यार, कोई स्वार्थ नहीं है माँ के दिल में बच्चे के प्रति। और बच्चा हमेशा कोई भी अगर गलती करे माँ को जाकर के बता दे, तो फिर माँ कभी नहीं कहेगी घर से निकल जा, फिर भी उसको समझा करके, उसको करके, फिर भोजन खिला करके, उसको प्यार देके, वो करके शिक्षाएं भी देंगी लेकिन प्यार भी देंगी, कभी वो टुकराती नहीं है अपने बच्चों को, है ना। और मैं भी, मैं आत्मा भी कुछ भी गलती करे करे, लेकिन भगवान के पास जाकर के माफी मांगे करे, फिर से वो क्षमा का सागर है। शिक्षाएं देंगे बेटा ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो क्षमा का सागर है, वो क्षमा करके फिर भी वो प्यार मुझ आत्मा को वो देंगे, वो कभी नहीं ठुकराएंगे, हमेशा वो अपनाएंगे, है ना। नहीं तो फिर हमेशा ये डर बना रहता है कि अगर मैं ये कर्म नहीं करूंगी तो भगवान कहीं रूठ ना जाए, कहीं श्राप ना दे दे। भगवान कभी श्राप दे सकते हैं? श्राप दे सकते हैं? डर तो बना रहता है ना, डर के मारे आप अगर भगवान को याद करो या फिर पूजा अर्चना करो, कहीं मैं रुक ना जाऊं या फिर उसको छोड़ दूं तो भगवान मेरे से रूठ ना जाए, इसीलिए करते रहेंगे। डर से उनको याद करेंगे तो प्राप्ति कितनी होगी। डरने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भगवान कभी भी हमें श्राप नहीं दे सकते, क्योंकि वो क्षमा का सागर है। क्योंकि उनको चाहिए कुछ भी नहीं ना, वो तो सागर, हम ही उनको लालच दिखाते हैं, है ना। जैसे कि ये कर लो तो फिर मैं 1001 रुपया दे दूंगी, ये हो जाए, ये काम हो जाए तो मैं ये मंदिर बनवा के देंगे, ये काम हो जाए तो इतना नारियल तोड़ेंगे। हम ही लालच दिखा, हम ही रिश्वत देते भगवान को, क्या मेरा 1001 रुपये की आवश्यकता है, 1 लाख जो भी, चलो 1 लाख दे, 1 करोड़ दे, क्या 1 करोड़ की आवश्यकता है भगवान को मेरी? नहीं जरूरत है, क्योंकि वो तो दाता है, है ना। हम ही लालच रख करके ये देंगे तो मैं दूंगी, नहीं देंगे तो नहीं मिलेगा। आप ये मेरा काम नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा, अगर ये काम हो जाए तो मैं, ये काम हो जाए तो मैं आपके मंदिर विजिट करेंगे। तो ये जैसे लालच, जैसे भगवान को वो वेट कर रहे कि आ जाए आ जाए आ जाए, वो तो है वहां, लेकिन ठीक है जो भी आएंगे उनको आशीर्वाद देते, उनकी भलाई नहीं होगी मेरे जाने से, मेरा भला, मेरी भलाई होगी ना, मुझे आशीर्वाद मिलेगा, मुझे प्राप्ति होगी भगवान को याद करने से, उनको कुछ प्राप्ति तो होगी नहीं, मैं जाऊं या ना जाऊं, है ना। तो वहां उनको जब चाहिए नहीं तो फिर रूठना, रूसना या फिर श्राप देने की बात ही नहीं है। इंसान जो अपने बच्चे अगर कुछ भी गलत व्यवहार करे, गलत कर्म करे, क्या माता पिता अपने बच्चों को श्राप दे सकते? माँ अपने बच्चे को श्राप दे सकती है? पिता अपने बच्चे को श्राप दे सकते हैं? नहीं दे सकते, भले वो कितना भी टुकराए ये करे, फिर भी कहे चलो खुश रहे बस, है ना। इतना बड़ा दिल होता है इंसान के माता पिता, और भगवान परमात्मा तो दाता है, देने वाला है, वो कभी भी रूठते नहीं है, है ना। तो परमात्मा हमेशा क्षमा का सागर, माँ के रूप में हमेशा क्षमा करते हुए, प्यार देते हुए हमें आगे बढ़ाते हैं। और तीसरा संबंध है टीचर, परमात्मा को अगर टीचर बनाते हैं, टीचर से क्या मिलेगा? टीचर तो ज्ञान का सागर है, टीचरों का भी टीचर वो ऐसा टीचर है जो ये यूनिवर्सिटी और स्कूल्स में नहीं सिखाया जाता है, ऐसी बातें, जीवन की बातें। तो आजकल यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स में तो जीवन की बातें तो सिखाते नहीं है, केवल सब्जेक्ट्स के बारे में सिखाते हैं, लेकिन परमात्मा का ज्ञान ऐसा है जीवन जीने की कला सिखा, लोगों के साथ व्यवहार कैसे करना है, अपने संस्कारों को कैसे बेहतर बनाना है, तो हर चीज परमात्मा का ज्ञान। टीचर बना करके तो देखे, ज्ञान का भंडार आपको मिलता जाएगा। और चौथा संबंध है गुरु का संबंध, सद्गुरु का संबंध, गुरुओं का भी गुरु सदगुरु है परमात्मा, और गुरु का कर्तव्य क्या है? गति सदगति का ज्ञान देना, मार्ग बताना, है ना, गाइड करना, जीवन के तूफानों से हमें गाइड करना। तो परमात्मा के हाथ तो थाम के देखें आप, भले कितना भी तूफान आए आपके जीवन में, ऐसा लगेगा कि परमात्मा के हाथ मेरे हाथ में है, और वो तो उस तूफान से भी आप सहज रूप से निकल सकते हैं। कहीं भी प्रॉब्लम्स आता है, मान लीजिए कोई संबंधों में प्रॉब्लम है, हेल्थ का इश्यू है, धन के इश्यू है, जो भी, जीवन में तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं ना। जब प्रॉब्लम आता है तो भगवान के पास जाकर के क्या कहते हैं हम? कहते हैं क्या कहते हैं हम? या कहते ये कहेंगे कि ये प्रॉब्लम है, इसको मिटा दो, उसको दूर कर दो, ऐसे कहते हैं ना। क्या अपने प्रॉब्लम्स भगवान हमारा सॉल्व करते हैं? प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं परमात्मा हमारा, करते हैं? हाँ, करना और करने में मदद करना ये दो अलग अलग चीज है ना। क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स है मेरे लाइफ में वो किस कारण से है? किस कारण से है? अपने ही कर्मों के कारण से है ना मेरे प्रॉब्लम्स। जो रायता मैंने फैलाया है साफ भी मुझे करना है। प्रॉब्लम्स जो कर्म जो मैंने किया हुआ है पिछले जन्मों में, जो मैंने प्रॉब्लम्स किया है, तो फिर उसके कारण से आज आया है ना। तो अब ये कहे कि मैंने प्रॉब्लम क्रिएट किया तो आप आकर के उसको क्लीन करो, होगा? हाँ, क्यों करे वो साफ, क्यों करे वो सोल्यूशन, क्यों देवे वो सोल्यूशन, है ना। तो वो देंगे लेकिन फिर हमें गाइड करते हैं। ये प्रॉब्लम तुमने क्रिएट किया लेकिन तुमको ठीक करना है, तो वो गाइड करते हैं कि ऐसे करो वैसे करो, ये कर्म सुधारो तो ये ठीक होगा, तो वो गाइड करते हैं। तो सद्गुरु का काम है गाइड करना, है ना। जरूर प्रॉब्लम सॉल्व होगा लेकिन फिर मुझे ही उसको ठीक करना पड़ेगा, लेकिन मेरा संबंध जब परमात्मा के साथ ठीक है तो फिर वो जो सिग्नल्स मिलते हैं, वो जो गाइडेंस मिलता है, उस गाइडेंस के अनुसार मैं जब चलना शुरू करती हूं तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। इसके लिए कहते हैं परमात्मा का श्रीमत, श्रीमत अनुसार जब मैं चलना शुरू करती हूं सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलना शुरू होता है, है ना। ये अंतर पता चला ना। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें नहीं मांगना है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मदद परमात्मा से मिलता जरूर है, है ना। ये रहा संबंध। और तीसरा लेवल जो योग याद का है वो कौन सा है? स्नेह, है ना। पहला परिचय था, परिचय संबंध, और फिर तीसरा है स्नेह। और उस स्नेह को गहरा करना है। परमात्मा तो प्रेम का सागर है, परमात्मा तो प्रेम का सागर है ही, है ना। क्षमा का सागर है, प्रेम का सागर है, तो उनके उनसे तो प्रेम मिल ही रहा है, लेकिन मेरे दिल में परमात्मा के प्रति प्यार क्या है वो गहरा करना होगा। क्यों गहरा करना होगा? जैसे कि एक पेपर को धूप में रखते हैं, सालों सालों तक उसको धूप में अगर रखेंगे तो फिर जलता नहीं है, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस रखा और उसके फोकल पॉइंट पर पेपर को रखा तो वो जो सारे जो सूर्य के किरणें एकाग्र हो गया फोकल पॉइंट पर, वो फिर जलना शुरू हो गया। सूरज के किरणों में वो ताकत है, वो हीट है, लेकिन जलाने जितना हीट नहीं है। और जब वो फोकस होता है वो हीट क्रिएट करने के कारण से वो जलना शुरू होता है। ऐसे ही परमात्मा को केवल ऊपर ऊपर से याद कर लिया, कभी परमात्मा को शक्तिशाली शक्ति का सागर है, सर्वशक्तिमान है, या पिता के रूप में, माँ के रूप में, थोड़ा बहुत एक एक सेकेंड, दो दो सेकेंड ऐसे याद करते गए, तो वो कुछ अनुभूति नहीं होगी। एक चीज, एक शब्द और एक संबंध या एक गुण को लेकर के जब हम उसकी गहराई में जाते हैं तो फिर आत्मा उसको अब्सॉर्ब करती है। जैसे मुझे अगर आत्मा को शक्ति चाहिए, परमात्मा सर्वशक्तिमान है, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, तो उस स्थिति में, उस संकल्प में थोड़े समय जब मैं रहूंगी तो फिर उस चीज को, उस शक्ति को मैं अब्सॉर्ब कर सकती हूं। जैसे भूमि बहुत मतलब बहुत ड्राई हो गया है, अगर बारिश आधे घंटे के लिए जोरदार बारिश आकर के रुक गया, उससे कुछ लाभ होगा? थोड़ा बहुत लाभ हो सकता है, लेकिन लंबे काल का लाभ उस भूमि को नहीं मिलेगा। धीरे धीरे से वो लंबे समय तक जब बारिश होगी तब वो भूमि अब्सॉर्ब करता है, तब फसल अच्छे आते हैं। आप यहां आए, 3 दिन योग लगाया, फिर बाद में जाकर के फिर छोड़ दिया, थोड़ा बहुत अनुभव हुआ, थोड़ा बहुत प्राप्ति हो गई, लेकिन फिर लंबे काल के लिए जो होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसीलिए लगातार उसके गहराई में जब जाते हैं, जब स्नेह में मग्न हो जाते हैं तो पता नहीं चलता। जैसे कोई मतलब किसी के प्रेम में, प्यार में इतने मग्न हो, उनके बारे में सोच रहे हैं आप, तो कोई भी आया गया पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं चलता। आंखें खुले हैं लेकिन उनको देखा भी आपने, फिर ध्यान नहीं गया। अच्छा आप आए थे क्या कमरे में? हाँ, वो कहते मैं आके भी चला गया, आपने देखा भी लेकिन आपने रेस्पॉन्ड ही नहीं किया। अच्छा आप आए थे क्या? देखा भी लेकिन रजिस्टर क्यों नहीं हुआ? वो आए थे कमरे में और जाके गए क्योंकि अंदर आप बिजी थे, अंदर बिजी होते होने कारण से बाहर कुछ होते हुए भी उस पर ध्यान नहीं रहेगा। तो मेडिटेशन में अगर अंदर बिजी रहना है तो फिर प्यार में मग्न जब होते हैं तो फिर ध्यान नहीं रहेगा आसपास का, फिर एकाग्रता होगी, एकाग्रता से फिर प्राप्ति, नेक्स्ट लेवल जो चौथा लेवल है, प्राप्ति की अनुभूति, है ना। स्नेह जितना जितना डीप होता जाएगा फिर प्राप्ति की अनुभूति होना शुरू होगा। तो ये 4 लेवल है याद करने के लिए। कौन कौन सा? परिचय, संबंध, स्नेह, प्राप्ति, है ना। इन 4 ही लेवल से डीप होता जाएगा। परिचय से संबंध डीप है, संबंध से स्नेह डीप है, स्नेह से फिर प्राप्ति होना शुरू होगा। ये है आधार मेडिटेशन करने के लिए। अभी हम विधि को देखें, किस किस रूप से हम मेडिटेशन कर सकते हैं। फिजिकल लेवल में आपका कैसे भी आप बैठ सकते हैं, चाहे वो चेयर पे बैठे, नीचे बैठे, सुखासन में बैठे, कहीं भी बैठ सकते हैं, लेकिन अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। क्यों हम ये कहते हैं कि कहीं भी बैठे? क्योंकि अगर आपको कहे घुटनों में दर्द है लेकिन कहे कि नहीं जमीन पर ही बैठना है, पद्मासन पर ही में ही बैठना है, आपको वो पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए जबरदस्ती भी बैठ गए लेकिन दर्द हो रहा है, योग वहां परमात्मा के साथ योग लगाने के बजाय योग घुटनों के साथ लग रहा है ना। तो इसीलिए शरीर से न्यारा होने के लिए शरीर को कंफर्टेबल रखना जरूरी है, तभी हम डिटैच हो सकते हैं शरीर से। कहीं भी दर्द है, बुद्धि वहां जाता रहेगा। और दूसरी बात है, जब मेडिटेशन करते समय हम रेड लाइट लगाते हैं, कमेंट्री देते हैं, या म्यूजिक चलाते हैं, या गीत बजाते हैं, ये जो भी बाहरी जो आधार है, सपोर्ट है, केवल बिगिनर्स के लिए है। जब शुरुआत में हमें मदद की आवश्यकता होती है, तो इसीलिए हम इसका आधार हम लेते हैं, क्योंकि हम क्या सोचना है उसको पता नहीं है, इसीलिए इसका सपोर्ट हम जरूर लेंगे। लेकिन आगे चल करके इससे भी आपको मुक्त होना जरूरी है, क्योंकि अगर इसमें मेडिटेशन करना है लेकिन बिजली नहीं है, म्यूजिक नहीं है, लाइट नहीं है, तो उसके कारण से मेरा मेडिटेशन नहीं हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, है ना। और मेरा आधार ये कमेंट्री के ऊपर भी नहीं होना है, क्योंकि मेरा जो कनेक्शन है परमात्मा का वो पर्सनल होना चाहिए। कोई सोचते हैं कि कमेंट्री हम सुन ले, उसको रट ले, जो बहन कमेंट्री दे रही हैं उसको रट लेते हैं, फिर मैं मेडिटेशन में उसी को दोहराऊंगी, वो भी रॉन्ग है, क्योंकि उसको दोहराने की जरूरत नहीं। जैसे मंत्र जाप हो गया ना, मंत्र जाप करते करते हम फिर वो एसेंस ही नहीं रहेगा। इसीलिए कि मेरा जो कनेक्शन है वो पर्सनल होना चाहिए परमात्मा के साथ, कोई रटा रटा या कोई बात ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए किसके ऊपर भी, हाँ, बिगिनर्स के लिए वो मदद मिल जाता है। अगर आप कुछ सोच नहीं पा रहे, उसकी मदद आप जरूर ले सकते हैं। और तीसरी बात है, मेडिटेशन करते समय अपने आंखों को खोल करके रखना है। ये ओपन आई मेडिटेशन है, क्लोज्ड आई मेडिटेशन नहीं है। थोड़ा पंखा बढ़ाइए। ये क्लोज्ड आई मेडिटेशन नहीं है, क्यों? जब आंख बंद करते हैं ना, तो मन इधर उधर बहुत जल्दी भाग जाता है। खुले आंखों में मन जल्दी सहज रूप से भागता नहीं है, है ना। तो इसीलिए, लेकिन कई लोग कहते हैं कि आंख खोल करके जब मेडिटेशन करते हैं तो हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, एकाग्रता नहीं होती मन की। लेकिन एकाग्रता होती भी है, 2-4 मिनट के लिए होगा, फिर उसके बाद मन भटकना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए अभ्यास करना जरूरी है आंख खोल करके मेडिटेशन करने की। और आंख कैसे खोलना है, बहुत पूरी तरह नहीं खोलना है, हाफ क्लोज्ड। जैसे योगियों का चित्र देखा होगा, महावीर जी का, महात्मा बुद्ध का, कोई भी योगी है, उनके आंख हाफ ओपन रहेगा। हाफ ओपन माना भले मैं देख रही हूं, लेकिन फिर मेरा ध्यान वहां नहीं है, ध्यान पूरी तरह मेरे में है। वो अंतर्मुखी होकर के अंतर दर्शन कर रहे हैं, तो वो स्थिति से आंख को, और आंख को कैसे, कहाँ टिकाना है। कहीं सोचते हैं कि यहां जो पॉइंट ऑफ लाइट है तो वहां से मुझे शक्ति मिलेगी, ये तो चित्र है, यहां से तो शक्ति नहीं मिलेगी। परमात्मा कहाँ है? परमात्मा तो ऊपर है ना, परम धाम में है, तो मुझे इस चित्र से शक्ति नहीं मिलेगी, वो केवल एक जड़ चित्र है ना। लेकिन चित्र इसीलिए रखा हुआ है ताकि फिर आंख कोई भी एक चीज पर एकाग्र नहीं कर रहा है, टिकाना है बस। एक जगह पर मैंने आंखों को टिका दिया, फिर मन को परमात्मा में ले जाना इजी हो जाता है ना। अगर मान लीजिए, अगर मैं आंख इधर उधर देख रही हूं, यहां क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, मन भी भटकेगा। भटकती मन के आंखें, वो भी भटका हुआ होता है। तो इसलिए आंख अगर स्थिर होगा, मन को एकाग्र करने में इजी हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ओके। और ये रहा बाहरी लेवल के जो तैयारियां, लेकिन फिर मन में क्या सोचना है मेडिटेशन करते समय। तो सबसे पहला कदम है, जब मेडिटेशन में बैठते हैं स्थिर, जितना बॉडी स्थिर तो मन स्थिर रहेगा, उसके लिए बॉडी स्थिर रखना, अलर्ट रखना, कंफर्टेबल भी हो लेकिन अलर्ट भी हो। और जो पहला लेवल है जो सोचने की, वो है मनन चिंतन कहते हैं। मनन चिंतन माना विचारों को चारों तरफ से विड्रॉ करके, जो सोच रहा है मन इधर उधर की बातें, उसको विड्रॉ करके फिर आत्मचिंतन करना शुरू किया। मैं आत्मा हूं, भ्रुकुटि के मध्य में हूं, चमकता हुआ सितारा हूं, आत्मचिंतन की बातें मैं सोचना शुरू किया, ताकि फिर बाहर से आत्मा यहां अंतर्मुखी हो करके फिर आत्मचिंतन करना शुरू किया, है ना। सेकेंड लेवल है कनेक्शन। पहला है आत्मचिंतन, सेकेंड लेवल है कनेक्शन, परमात्मा चिंतन। परमात्मा कौन है, क्या है, उनके गुण और कर्तव्य क्या है, वो है संबंध जोड़ना शुरू किया, कनेक्शन जोड़ना शुरू किया सेकेंड लेवल में। और थर्ड लेवल में क्या होगा, कोई भी एक संबंध या कोई एक गुण में स्थित हो जाना कुछ मिनटों के लिए, आधे घंटे के लिए एक गुण में स्थित हो जाना पॉसिबल नहीं है, मन भटकना शुरू हो जाएगा। इसलिए कुछ मिनटों के लिए स्थिर कर लेना, एकाग्र कर लेना, ताकि फिर मैं उस शक्ति को, उस गुण को मैं अब्सॉर्ब कर सकूं, है ना। और फिर चौथा लेवल है प्राप्ति की अनुभूति होना शुरू होगा, ठीक है। पहले मनन चिंतन, दूसरा मनन चिंतन आत्मचिंतन, दूसरा है कनेक्शन, तीसरा है एकाग्र हो जाना उसमें, फिर चौथा है प्राप्ति होना शुरू हो जाएगा, है ना। तो उसके लिए हम सूक्ष्म शक्तियों को कैसे हम यूज करते हैं, तीन सूक्ष्म शक्तियों को यूज करते हैं, वो है मन से विचार करना, सकारात्मक विचार, आत्मा सोचना, आत्मिक विचार, या फिर आत्मचिंतन करना शुरू करते हैं मन से विचार, पॉजिटिव थिंकिंग या श्रेष्ठ सोचना होता है। और दूसरी बात है कि विजुलाइज करना शुरू करते हैं। विजुलाइज करना या देखना बहुत जरूरी है, और हम सभी उसके आदती हैं, आदत है उस चीज की। जैसे यहां बैठ करके अगर हम कहें आपको कि आप ना अभी अपने घर के, जहां भी रहते हैं आप, आपके घर के किचन में पहुंचिए, आप ग्लास उठाइए, पानी भरिए और बैठ करके और ठंडा ठंडा पानी पी लीजिए, क्या महसूस हुई आपने? अब देख पाए ना, बुद्धि से देख पाए ना, आप अपने घर में गए, किचन में गए, पानी भरे, वो विजुलाइजेशन, इस वो आदती है, बुद्धि उसको देख सकती है। यहां बैठे बैठे आप वहां गए, है ना। और ठंडे ठंडे पानी पीने के बाद कुछ महसूस हुई यहां, ठंडा ठंडा हुई, हा? वो जब हम क्लियरली विजुलाइज करते हैं ना, वो महसूस भी होना शुरू हो जाता है। तो वो तीसरी शक्ति है अनुभव, महसूस करना। जैसे मैं आत्मचिंतन करना शुरू किया, मैं आत्मा भ्रुकुटि के बीच में हूं, चमकता हुआ सितारा हूं, या आत्मचिंतन। दूसरा है विजुलाइजेशन, देखना, बुद्धि की आंख से मुझे देखना है कि मैं सचमुच या सच चमकता हुआ सितारा हूं। आंख खुला है मेरा, लेकिन फिर भी मैं देख पा रही हूं, मैं आत्मा प्रकृति के मध्य में चमक रही हूं। विजुलाइज कर सकते हैं, है ना। और तीसरी बात है, जब मैं ये कहूंगी कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, केवल सोचना और विजुलाइज नहीं करना है, लेकिन महसूस करना है कि मैं सचमुच आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ। ये तीनों बातें अगर जब इकट्ठा होता है, एक साथ साथ होता है, आत्मचिंतन, विजुलाइजेशन और महसूस करना, तीनों ही साथ साथ होगा तो फिर बहुत पावरफुल मेडिटेशन हो सकता है, बहुत शक्तिशाली हो सकता है मेडिटेशन। ठीक है, कोई प्रश्न, कोई डाउट्स है मेडिटेशन के बारे में? हाँ जी, प्रोसेस, विधि, आत्मचिंतन, आत्मचिंतन, कनेक्शन जोड़ना परमात्मा चिंतन करते हुए, फिर उसके थर्ड लेवल है कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता, फिर अनुभूति, है ना। ये चार स्टेप्स है जो अनुभव कर जी बुद्धि, मन को लेके गए, लेकिन बुद्धि से आपने विजुलाइज किया, इसीलिए बुद्धि को कहते हैं वो तीसरी आंख है। तीसरा आंख कौन सा है? शंकर जी को कहते हैं तीसरा आंख खोल दिया और भस्म हो गया सब कुछ ना। हमारा तीसरा आंख जब खुल जाता है तो हम अपने ही कमी कमजोरियों को भस्म कर सकते हैं। इस तीसरे आंख से आप देख सकते हैं। हाँ, कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है तो अभ्यास, अभ्यास जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना वो कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि अभी तक क्या हुआ है, मन को आपने कंट्रोल करने की कोशिश ही नहीं की है, राइट। हर एक की कहानी यही है, क्योंकि मेडिटेशन के बारे में पहले पता नहीं था, मेडिटेशन जब इसके बारे में सुनने लगे तो सोचने लगे कि चलो मन को कंट्रोल करना करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर मन कंट्रोल इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि कभी कंट्रोल किया ही नहीं बचपन से लेकर के अब तक। ऐसे मान लीजिए आपके बच्चे हैं, बच्चों को आपने पूरी खुली छुट्टी दे दी, फ्रीडम दे दी, बेटा आपको कुछ जो करना है कर लो, अगर गलत भी किया टोका नहीं, उसको शिक्षाएं नहीं दी, उसको समझ नहीं दी, उसको जो किया आया वो करता गया, है ना। लेकिन 20 साल के बाद, 25 साल के बाद लगता है कि नहीं उसको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, तो कंट्रोल करना शुरू किया कि नहीं करो, ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो, यहां नहीं जाओ, ये नहीं जाओ, वो सुनेगा, थोड़ा मुश्किल लगेगा, थोड़ा लंबा टाइम लगेगा उसको ठीक करने में। ऐसे ही मन को हमने खुली छुट्टी दे दी थी बचपन से, जहां जाए जहां जाए ये करे वो करे, लेकिन अभी मैं कोशिश कर रही हूं कंट्रोल करने की, वो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जब मैं समझती हूं मन को, मन को समझना जरूरी है उसको कंट्रोल में लाने के लिए, क्योंकि मन सूक्ष्म है, मन को आप देख सकते हैं, मन को देख सकते हैं आंखों से? नहीं देख सकते, केवल आपको ही पता है आप क्या सोच रहे हैं, केवल आपको ही पता है ना, तो वो सूक्ष्म चीज है ना, तो उसको आप सूल चीजों को आधार बना करके सूक्ष्म चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना। चुपचाप बैठ जाओ यहां और सोचो परमात्मा के बारे में या मेडिटेशन, शरीर को तो बिठा दिया लेकिन मन को बिठाने के लिए उसको समझ चाहिए, राइट। तो इसीलिए बड़े बुजुर्गों ने जो भक्ति मार्ग जब शुरू हुआ, मंत्र जाप है या फिर माला फेरना, तो ये सारा स्थूल आधार लेना शुरू किया, ताकि फिर कुछ तो स्थूल चीज से फिर सूक्ष्म को कंट्रोल कर पाए। लेकिन फिर करते करते क्या हो जाता है, मान लीजिए आप माला फेर रहे हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, लेकिन 2-3 मिनट तो एकाग्र रहा कि उस मंत्र में ओम नमः शिव, मन भी रहा वहां ओम नमः शिवाय, लेकिन फिर मन क्या कहता है कि चलो मुख तुम मंत्र जाप करते रहो, हाथ तुम माला फेरते रहो, मैं थोड़ा घूम के आता हूं। मुख से मंत्र जाप कर रहे हैं, हाथ से माला फेर रहे हैं, लेकिन मन कहाँ गया? मन कहाँ गया? भटकना शुरू हो गया, है ना? ये प्रैक्टिकल बात है। आपका नियम है हर रोज सुबह स्नान करने के बाद थोड़ा पूजा करके, 5 मिनट पूजा करके, दिया जला करके, आरती करके फिर निकलना। लेकिन हमेशा लेट ही होता है सुबह सुबह, स्नान करके निकले, लेट हो रहा है, हाथ से आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, लेकिन क्या नाश्ता तैयार है? इसका फोन आया, वो नहीं हुआ, ये काम हुआ, तो फिजिकली आप कर रहे हैं सर्व कर्म कांड, लेकिन बोल क्या रहे हो, सोच क्या रहे हो, उससे कुछ अनुभव प्राप्ति नहीं होगी। प्राप्ति तब होता है जब मन से परमात्मा को हम याद करते हैं, मतलब मन मना भव, मन से जब परमात्मा के प्रति एकाग्रता से यह याद करते हैं तो फिर शक्तियों की अनुभूति होगी, प्राप्ति होगा, है ना? इसलिए मन को एकाग्र करने के लिए मन को समझना जरूरी है। मन को एक छोटे बच्चे के रूप में आपको ट्रीट करना है। बच्चा कैसा होता है? एक छोटा सा बच्चा, 1 साल का बच्चा है, तो उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? उसको बहुत क्यूरियोसिटी है, ये टच करना, ये टच करना, ये क्या है, ये क्या है, वो समझना और देखना उसको क्यूरियोसिटी है। कहे बेटा ये टच नहीं करो, ये आग है, जल जाएगा, तो क्यूरियोसिटी, जलना कैसा होता है, टच करके देखेंगे, है ना? उसको ये है, चंचलता है, क्यूरियोसिटी है। तो अगर मन को कहेंगे मन इसको नहीं सोचो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, मन जरूर जाएगा वहां। इसके बजाय क्या करना है, क्या नहीं करना है उसको नहीं बोलना है, क्या करना है उसको वो बोलना है। अगर कहे गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा जरूर आएगा। जैसे अगर आपको कहे अगले 30 सेकंड में आप ना बंदर को याद नहीं करना, कभी याद नहीं किया होगा यहां आने के बाद, है ना? लेकिन जैसे ही हमने कहा कि बंदर को याद नहीं करना, तो क्या चित्र आया? बंदर का चित्र आया, लेकिन इंस्ट्रक्शन क्या था? याद नहीं करना, है ना? तो गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, गुस्से को आप एनर्जी दे रहे हो, गुस्सा ऑब्वियसली बढ़ेगा ना, है? तो वो गुस्से के बजाय उसका ऑपोजिट क्या है? शांति। आत्मा के जो निजी गुण है वो शांति है ना, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, वो मेरा गुण है। वो कहीं ना कहीं कम होने के कारण से गुस्सा आ गया। जैसे अंधकार क्यों क्यों होता है, रोशनी निकल जाता है, सूर्यास्त हो गया तो अंधेरा हुआ ना, सूर्योदय हो गया तो अंधेरा ऑटोमेटिकली चला जाता है। ऐसे ही गुण भरपूर है तो अवगुण आ ही नहीं सकता। गुण की रोशनी है, शांति की रोशनी है, क्रोध रूपी अंधकार आ ही नहीं सकता। इसलिए क्या अनुभव करना है, क्या करना है, तो वो सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली इस रूप से कंट्रोल करना है। मन क्यों भाग रहा है? ये हमने खुली छुट्टी, उसको इंस्ट्रक्शन दे, इसके बारे में ही सोचना है, इसके बारे में ही सोचना है, तो वो सोचना शुरू होगा। ठीक है, काम करते हैं, लेकिन कॉन्शियस माइंड को आप ट्रेन करते करते वो सबकॉन्शियस माइंड में जाना शुरू होगा। आप कंट्रोल केवल कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। ओपन आई में अगर नहीं हो पाता है आपको, हाँ अभ्यास करना होगा। अगर आपको मुश्किल लग रहा है आंखों को खोल करके मेडिटेशन करने में, बीच में थोड़ा बंद भी कर लिया, लेकिन लंबे काल तक आप बंद नहीं रखना, 1-2 मिनट के लिए बंद रखा फिर खोल दीजिए, है ना? फिर वो अभ्यास धीरे धीरे होगा। आधे घंटे के लिए पूरा 10 मिनट के लिए बंद नहीं रखना, हा? बीच में, हाँ, बंद रखने से नींद आ जाता है, खोल कर रखने से नहीं आएगा नींद, इसलिए वो योग निद्रा हो जाता है। फिर नो उसने के उसके बाद फिर हम पूछेंगे भाई कैसा रहा अनुभव। बहन जी बहुत अच्छा रहा, वो शांति बहुत अपरम शांति की अनुभूति हुई। लेकिन कौन सी शांति, नींद की शांति या फिर योग की शांति, वो पता नहीं है, है ना, होता है। हाँ जी एक मिनट, इनका पूरा पूछ रहे कुछ। हाँ जी हाँ, मेडिटेशन तो वो बुद्धि वहां ले जाना है ना, परम धाम में ले जाना है। हाँ हाँ जी हाँ जी कोई भी एक चीज पर, जैसे लेवल में हो, कोई भी एक चीज पर आप आंखों को स्थिर रखें। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ऊपर, ये अगर आपको ये बिंदी बहुत ऊपर लग रहा है, ये गर्दन आपका कंफर्टेबल नहीं है, तो जब ऐसे लेवल जहां कंफर्टेबल है एक जगह पर आंखों को टिका दे। योग माना कनेक्शन, जोड़ राज्य। इस योग के द्वारा जब कर्मेंद्रियों पर राज्य करते हैं उसको राज्ययोग का। हाँ जी हाँ, वो प्रैक्टिस कराना पड़ेगा ना। हाँ, इनका प्रश्न ये है कि गलत काम करने के लिए तो मन सहज रूप से वो मान जाएगा, लेकिन सही काम करने के लिए, अच्छे काम के लिए उसको मनाना पड़ता है, मनाना पड़ता है। हाँ, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन करना पड़ेगा आपको मन को। जीवन को डिसिप्लिन करने के लिए मन को डिसिप्लिन करना ही पड़ेगा, है ना। नहीं, अगर आपका जो एम है, लक्ष्य है जीवन का, लक्ष्य जितना ऊंचा होगा उतने डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली आना शुरू होगा, है ना। प्राप्ति, प्राप्ति जब मुझे क्या चाहिए, अगर मेरा लक्ष्य ही ऐसा है, अगर मैं लक्ष्य रखती हूँ आईएएस पास करना है, वो हाईएस्ट है, तो मेहनत तो करना पड़ेगा ना। मेहनत करने के लिए फिर डिसिप्लिन चाहिए। अगर मेरा लक्ष्य ये है कि ठीक है बीए बीकॉम करके मैं पूरा कर लूँ, तो डिसिप्लिन भी नहीं रहेगा, है ना। लक्ष्य ऊंचा रखेंगे तो हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। यूज कहां से होगा, क्योंकि वो यूज हर कर्म में दिखाई देना शुरू होता है। फिर मुझे संबंधों में एक्सपेक्टेशंस नहीं रहेगा, मैं देने की भावना रखती हूँ, संबंध मेरा सुधरना शुरू हो जाएगा लोगों के साथ, और मेरा जो कर्म है वो उसमें एफिशिएंसी दिखने में आता है, क्योंकि मन क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगा। क्या करना, कन्फ्यूजन्स नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्लैरिटी आना शुरू हो गया, गलतियां कम होना शुरू हो जाता है। बहुत सारी प्राप्तियां, बहुत सारी चीजें, गलतियां कम होना शुरू होंगे तो फिर जीवन में सुख शांति, क्योंकि ज्यादा समय कहां जाता है, गलतियों को ठीक करने में ज्यादा समय जाता है। एक संबंध बहुत अच्छा है, लेकिन एक बार मैंने कुछ अपशब्द का प्रयोग कर लिया, सालों साल के संबंध बिगड़ गया, एक सेकंड में बिगड़ गया, और उस संबंध को पुनः ठीक करने में कितने दिन लगते हैं, महीने लग जाएंगे, है ना, कभी कभी सालों लग जाएंगे, है ना। गलतियों को सुधारने में ज्यादा टाइम जाएगा, इसलिए गलतियां कम होता जाए ना, तो फिर टाइम ही टाइम है आपके पास। जरूर आप एक्सप्रेस करें, लेकिन एक्सप्रेस करने का तरीका होता है, तरीका होता है। हाँ ठीक है, लेकिन हम प्यार से, आग को आग से नहीं बुझाया जाता, आग को हमेशा पानी से बुझाया जाता है, है ना। भले वो भले कैसा भी नीचे स्तर के व्यवहार कर रहे हैं, मैं अपना लेवल नीचे नहीं करूं, तो अपना लेवल तो गुणों का वो मेंटेन करके रखना पड़ेगा, तभी वो फिर वो बदलेगा। नहीं तो फिर वो भी चिल्ला रहा है, मैं भी चिल्लाना शुरू करूं, तो फिर उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, है ना। तो उसके लिए आत्मा की शक्ति चाहिए। उसके लिए फिर लीगल लीगल कदम उठाना पड़ेगा, लीगल कदम उठाना पड़ेगा, मतलब राइट वे में, ऐसे रॉन्ग स्टेप्स नहीं उठाना है, लॉ को हाथ में नहीं उठाना है, लीगल। दुनिया में तो हर प्रकार की चीजें हैं ईगो, लेकिन मैं कितना होल्ड कर पाती हूँ वैल्यूज के साथ, क्योंकि उसके लिए विश्वास की जरूरत है कि पॉजिटिविटी इज मच 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 मोर पावरफुल देन नेगेटिविटी। इस पर विश्वास रख करके अगर पॉजिटिविटी के साथ मैं व्यवहार करना शुरू करूँ, कहीं ना कहीं से रास्ता मिलेगा जरूर। जीवन में मिरेकल्स भी होते हैं, पता है ना, मिरेकल्स भी होते हैं। तो कोई ना कोई तरीका निकालना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि, इसीलिए हम कहते हैं कि मैं सॉल्यूशन देने के लिए नहीं बैठी हूं, आपको परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ करके आपके लाइफ के सॉल्यूशंस आपको खुद को ढूंढना पड़ेगा। अगर क्योंकि मैं जो समझ रही हूं, मैं केवल एक ही लेवल के, क्योंकि 1 मिनट में आपने एक्सप्लेन किया, जितना मेरी बुद्धि है उस रीति से मैं समझ रही हूं, लेकिन ओवरऑल पिक्चर केवल आपको पता है और परमात्मा को पता है। तो जब आप कनेक्शन जोड़ करके मेडिटेशन से परमात्मा की मदद और गाइडेंस लेंगे, तो कोई ना कोई रास्ता आपको जरूर मिलेगा। कॉम्प्रोमाइज नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। और फिर आपको लगता है कि ये तो मिराकल हो गया, यही तो मिराकल्स है। हाँ तो ओके, ठीक है, ये लाइफ के प्रॉब्लम्स है, बाद में बात कर लेंगे, अभी मेडिटेशन के, ठीक है, क्योंकि फिर वो थोड़ा सा डिट्रैक हो रहा है, है ना। मेडिटेशन के कनेक्टेड कोई ऐसे, आई कैन टॉक टू यू लेटर, ओके। हाँ हाँ जी, मेडिटेशन से कनेक्टेड कुछ ये हो, प्रश्न हो तो पूछ लीजिएगा। मन को बुद्धि नहीं, हाँ दोनों है, मन को बुद्धि से कंट्रोल कर सकते, और वो छोड़ो ना, वो कंफ्यूजन नहीं ले जाइए कि क्या सोचना है, वो डिसाइड करे और सोचना शुरू करे, डायरेक्शन देना शुरू करे बुद्धि को, मन को डायरेक्शन देना शुरू, क्योंकि और इतने इसमें डिटेल में जाएंगे ना, तो वो थोड़ा सा बिगिनर्स भी है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। केवल आपको मन को बताना है कि अभी मुझे मेडिटेशन करना है, ये सोचना है, हो जाएगा। मेडिटेशन करने का राइट टाइम है, अच्छा मैंने कभी भी कर सकते हैं, दिन को भी, रात को भी, रात को भी जब नींद खुल जाते तभी भी कर सकते हैं, बट द बेस्ट टाइम टू मेडिटेट वो है अमृत वेला मेडिटेशन, 4 बजे से 4:45 बजे। तो एक्चुअली अमृत वेला 2 बजे से शुरू हो जाता है, लेकिन फिर इतना जल्दी तो नहीं उठ पाते हैं ना, 4:00। बेस्ट टाइम है और रात को सोने से पहले भी। हाँ जी तो इसीलिए आप मन को ऊपर ले जाने की कोशिश ना करें, केवल आत्म अनुभूति तक ही सीमित रखें थोड़े दिन, है ना। मैं आत्मा ब्रह्मकुटि के मध्य में हूं और फील करें, और जैसे आत्मा पूरा शरीर को कंट्रोल कर रही है ऐसा पूरा आत्म अनुभूति में ही थोड़ा अभ्यास करें, फिर बाद में फिर थोड़े समय के बाद। हाँ जी वो लाइफ का है, मेडिटेशन का नहीं है ना, ये लाइफ का कनेक्टेड है, बाद में लेंगे इस प्रश्न को। हाँ जी हाँ, जब मेडिटेशन में भले आप प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं सोच रहे, जैसे ही आप मन को शांत करने की कोशिश की मेडिटेशन में बैठे, फिर प्रॉब्लम्स के तरफ मन जाना शुरू होगा। तो इसीलिए मन को बताना होगा प्रॉब्लम्स है लाइफ में, उसके बारे में बाद में सोचा जाएगा। हे मन, केवल 10 मिनट के लिए चलो, हम परमात्मा अनुभूति करते हैं। मन को डायरेक्शन देना पड़ेगा, 10 मिनट के बाद उसके बारे में सोचेंगे, 10 मिनट के लिए हमें मेडिटेशन करना है ना, मन के साथ बात करके उस रीति से ट्रेन करना होगा। सो सकते हैं मेडिटेशन करने के बाद, सो सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग डे रहेगा ना, तो पर को फिर नींद नहीं, मतलब रेस्ट नहीं मिलता, रो सो सकते हैं। किसको अच्छा नहीं लगेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे नहीं है कि उनको ऐसा है, उनको अच्छा लगे या ना लगे आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए मैं एक मिसाल दूं, एक है ना, एक फिशर वुमेन थी, है ना, जो रोज सुबह वो सारे मछलियों को टोकरी में रख करके सारा फिर वो बेच करके फिर आती थी। एक दिन ऐसे कुछ बारिश हो गया, पूरा घूम करके सारा बेच करके आ रही थी, बारिश हो गया तो फिर घर तक नहीं पहुंची। तो फिर उसकी सहेली का घर था, जो वो सहेली फूलों को बेचती थी, और जब उसके घर में गई और फूल की खुशबू है, तो रात को वहां सोना है, उसको सोई, फिर उसको नींद ही नहीं आए, खुशबू सारे फूल की खुशबू। तो उसने क्या किया, वो जो मछली का जो टोकरी था ना, वो मुंह में डाल करके सोई, तो फिर उसकी नींद आई फिर। तो आपको मछली की खुशबू अच्छा लगता है या फूल की खुशबू अच्छा लगता है? तो वो अगर उनको आश्चर्य नहीं, अगर आश्चर्य लगता है तो फिर उन लोगों को लगेगा ये कहाँ गए थे, मैं भी जाके आऊं, तो मैं भी उसको फॉलो करूं, मैं भी मेडिटेशन करूं, तो और सेवा हो जाएगा ना, है ना, सेवा हो जाएगा। अगर उनको भी अगर बदलते हैं, अच्छाई में बदलते हैं, है ना, वो भी अगर शांत हो जाए, वो भी सात्विक हो जाए, आपके फिर संबंध ठीक होने लगता है ना, फिर चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ऑफिस में, वो गलतियां नहीं करेंगे ना, वो भी शांत रहेंगे, तो और ही अच्छा है ना। ठीक है, जी जी जरूर जी, हाँ व्यवहार से हमें सेवा करना है। अभी बोलने से कोई सुने या ना सुने, अगर मैं बदलना शुरू करती हूँ तो उनको दिखाई देता है ना, अरे पहले इतना गुस्सा करते थे, अभी तो बिल्कुल नहीं कर, कहाँ गए थे ये लोग, तो मैं भी करूँ। तो व्यवहार से सेवा करना है ना। चलिए मेडिटेशन करें अभी। बहुत सारे प्रश्न होंगे जीवन के कनेक्टेड, फिर कोई ना कोई बहन से आप प्रश्न उत्तर कर सकते हैं, कोई ना कोई से आप वार्तालाप करते हुए आप अपने प्रश्नों का उत्तर जरूर ले सकते हैं। ठीक है, चलिए सीधा बैठ जाए। बैक बोन सीधा, जैसे मैं बोलती जाऊंगी वैसे आप सोचते जाएं, विजुलाइज करते जाएं और फिर महसूस करते जाएं। मन और बुद्धि को आसपास के वातावरण से, विचारों से विड्रॉ करते हुए भ्रुकुटी के मध्य में केंद्रित करें। वहां देखने की कोशिश करें अपने आप को। अति सूक्ष्म ज्योतिबिंदु स्वरूप, चमकता हुआ अजब सितारा, मैं आत्मा अनादि अविनाशी हूं, चैतन्य हूं, इस शरीर रूपी वस्त्र को धारण कर मैं आत्मा अपना पार्ट बजा रही हूं। कर्म करने वाली मैं आत्मा हूं। ब्रेन के बीचों बीच बैठकर आंखों द्वारा देखने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली, अलग अलग ऑर्गन्स के द्वारा अलग अलग कर्म करने वाली मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। मुझ आत्मा का निजी गुण शांति है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। मन और बुद्धि को अपना निजी घर परम धाम की तरफ ले चले। जहां मुझ आत्मा के पिता परम पिता परमात्मा विराजमान है, शिव बाबा विराजमान है, मेरे जैसे वो भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है, चैतन्य शक्ति है, उनके सानिध्य में मैं आत्मा उनकी शक्तियों से भरपूर हो रही हूं, परमात्मा से सर्व शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है, और मैं आत्मा उन शक्तियों को अब्सॉर्ब कर रही हूं, जैसे कि मुझ आत्मा के ऊपर परमात्मा की शक्तियों की बारिश हो रही है, मेरा पिता परमात्मा प्रेम का सागर है, उनके निस्वार्थ प्रेम मुझ आत्मा तक पहुंच रही है, परमात्मा प्रेम शुद्ध पवित्र प्रेम है, मैं आत्मा अपने सारे दुख दर्द चिंताएं परमात्मा को सौंप रही हूं, सब कुछ मिटता जा रहा है, मैं आत्मा बहुत लाइट होती जा रही हूं, हल्की होती जा रही हूं, प्रकाशमय होती जा रही, परमात्मा की शक्तियां और प्रेम मुझ आत्मा के अंदर समाता जा रहा है, अपने में भरते हुए वापस इस संसार में इस शरीर में निरंतर परमात्मा के साथ कनेक्टेड हूं, परमात्मा से लेते हुए पूरे संसार में दे रही हूं। परमात्मा शक्तियां, परमात्मा किस्मत, हर आत्मा को दे रही हूं, ताकि हर आत्मा उस परमात्मा की शक्तियों को और प्रेम को अनुभव करे, अपने जीवन में उतारे और ये संसार सुखमय हो जाए। ओम शांति।